शांति। आज की क्लास का टॉपिक है बाबा से रू रिहान कैसे करें। तो रू रिहान अर्थात बातचीत, यानी बातचीत करने के लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तब हम बातचीत कर सकते हैं। और वो भी समानता चाहिए, दो व्यक्ति में समानता है तो हम बातचीत कर सकते हैं। ऐसे दुनिया में ही देखा जाए तो दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो वो समानता का आधार चाहिए उसको। एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा अथॉरिटी वाला है तो उसमें उतनी अच्छी बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए घबराती है। क्योंकि यदि बड़े व्यक्ति का मूड अच्छा रहा तो वो प्यार से स्नेह के साथ अच्छी बात करेगा, और यदि मूड आप रहा तो क्या करेंगे, डांट भी लगा सकता है वो। तो इसलिए किसी ने कहा है कि बड़ों के आगे और घोड़े के पीछे नहीं जाना कभी, क्योंकि बड़ों के आगे जाएंगे तो क्या डांट मिलती है और घोड़े के पीछे लात मिलती है। तो जी हाँ, संस्कार मिलती तो ठीक है। तो ये दुनिया की बात है। तो दुनिया में भी देखो, एक दो के साथ बातें करते हैं तो उसमें स्वार्थ भाव रहता है उनका, कि किसी के साथ महत्वपूर्ण बात करवाने, किसी से किसी को, तो वो अच्छी मीठी मीठी घंटे तक उनके साथ बातें करेगा, और किसी से कोई लेन देन नहीं, कुछ बात करने का ही नहीं है तो उसे बातें नहीं करेगा। वो बेचारा बात करने के लिए आएगा तो वो कहेगा मेरे पास समय भी नहीं, अभी नहीं आओ, बाद में आना। तो इस प्रकार कहते कि दुनिया में स्वार्थ भाव है, स्वार्थ भाव से बातचीत करते हैं। लेकिन भगवान के साथ बातचीत करने के लिए इन बातों की जरूरत नहीं होती, में देखो भगवान इतना बड़ा अथॉरिटी है, क्योंकि बाबा क्या नहीं कर सकता कि कलयुग की दुनिया को सतयुग की दुनिया में परिवर्तित कर सकता है, पतित मनुष्य को पावन बना सकता है, जिस दुनिया में इतनी दुख दर्द है, व्यक्ति दुख से तड़प रहा है उसके दुख दूर कर सकता है, इतनी बड़ी अथॉरिटी है भगवान की। लेकिन भगवान के साथ कोई भी बात करता है, एक तो अमीर भी कर सकते तो गरीब से गरीब भी कर सकता है, बड़ों से बड़ा भी कर सकते तो छोटा भी कर सकता है, यानी ऊंची जाति का भी कर सकता तो नीची जाति वाला भी कर सकता है, क्योंकि ये भगवान की महानता निरंकारीपना है भगवान की। लेकिन उसमें ही एक कंडीशन है भगवान के साथ बात करने के लिए, वो कौन सी कंडीशन है? हाँ, उसके समान बनना पड़ेगा। जब उसके समान बनेंगे तब बाबा के साथ हम रूह रिहान कर सकते हैं। तो जैसे बाबा क्या है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है तो अशरीर ही है, तो वैसे हमें भी क्या करना पड़ेगा, अशरीर या ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बनना पड़ेगा, और उस स्वरूप में स्थित होके बाबा के साथ हम रूह रिहान कर सकते। नहीं तो बाबा अशरीर है और हम शरीर के भान में बात कर रहे तो वो नहीं हो सकती बात, क्योंकि हम शरीर के भान में हमें क्या याद आएगा, देह देह की दुनिया देहधारी ये याद आएंगी, भगवान के साथ रूह रिहान नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान के साथ भी रूह रिहान करने के लिए हमें समानता चाहिए, आप समान बनना पड़ेगा तब हम रूह रिहान कर सकते हैं। तो हम तो बाबा के साथ रूह रिहान कर सकते हैं, लेकिन बाबा हमारे साथ कर सकते क्या नहीं कर सकते, क्योंकि कोई प्रश्न है समस्या हम बाबा को पूछते हैं तो उसका उत्तर हमें बाबा देते हैं क्या नहीं देते, ये कैसे समझे हम, क्योंकि हम तो बाबा के साथ रूह रिहान कर रहे हैं और बाबा भी हमारी बात कर रहे, रिस्पॉन्ड देते हैं क्या नहीं देते, ये कैसे समझे हम। हाँ, सच्चे दिल से करेंगे तो हाँ, दिल से दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। तो उसके लिए बाबा मुरली में उत्तर देते हैं, क्योंकि जैसे हम कोई प्रश्न है कोई हमारी समस्या है तो बाबा को रूह रिहान में बता दो तो फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो बात या प्रश्न का उत्तर मुरली में आता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि आज की मुरली बाबा ने हमारे लिए चलाई है, क्योंकि उस मुरली में हमारे जो भी क्वेश्चन थे या समस्या थी सारा उत्तर मिल गया। तो पहली बात है मुरली से बाबा हमसे रूह रिहान कर सकता है। दूसरी यानी टचिंग, कभी कभी हम बाबा से समस्या प्रश्न पूछते हैं तो बाबा टचिंग भी कराते हैं हमको कि वो समस्या का समाधान कैसा करे, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे ना पड़ेगा, हमारी बुद्धि यदि क्लियर है बुद्धि तो बाबा की टचिंग मिलेंगी। यदि बाबा के इसमें हम एकाग्र मन बुद्धि से एकाग्र होना पड़ेगा, एक बाबा दूसरा न कोई, ये हमारी स्थिति रहेंगी तो बाबा की टचिंग हमें मिलेंगी, नहीं तो हमारी बुद्धि इधर उधर देहधारी में भटकेंगी तो टचिंग मिल नहीं सकती है। तो दूसरी बात, बाबा से रूह रिहान करने की एक टचिंग द्वारे बाबा हमसे बात करा सकते हैं। और तीसरी बात है चिट्ठी द्वारे, जैसे कोई समस्या है, हम द्विधा में है, बहुत ऐसा प्रॉब्लम है, हमसे भी वो निर्णय हम ले नहीं सकते, या कोई वरिष्ठ भाइयों को भी हम हमारी समस्या बताएंगे तो वो भी निर्णय नहीं दे सकते, तो ऐसे समय में क्या कर सकते हम, भगवान के साथ शेयर कर सकते, भगवान को बता दो, उसके लिए चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिख करके अपनी समस्या लिख के रख दो तो बाबा उसका उत्तर दे देंगे। इस पर मुझे मेरे जीवन की एक अनुभव याद आ रहा है कि बाबा ने कैसे उस समस्या का समाधान किया, हमारी ऐसी एक समस्या थी तो हम चिट्ठी द्वारे बाबा को बताया तो बाबा ने उसका उत्तर दे दिया। तो जैसे हम लौकिक में रहते थे तो उस समय गीता पाठशाला चलाते थे और सेंटर पर भी सेवा करते थे, तो हमारे लौकिक पर जो भाई वगैरह थे उसका कहना था कि आप इधर भी सेवा करो, यानी मधुबन में ऐसे बार बार नहीं जाओ, यहाँ पर थोड़ी सेवा करके इधर वापस आ जाना और गीता पाठशाला चला और सेंटर में भी सेवा कर सकते हैं, मधुबन में रहना या समर्पित नहीं होना। और हमारी जो टीचर बहन थी उसका कहना था कि मधुबन में तो बहुत सारे हैंड्स रहते, वहां पर तो सेवा कोई भी कर सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सेंटर पर हैंड्स की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ पर सेवा करेंगे तो आपका बहुत भाग्य बनेगा, तो ऐसा उनका कहना था। और इधर हमारे ये भाई साहब थे इंचार्ज, वो बोल रहे थे कि आप इधर ही हमारे डिपार्टमेंट में इधर समर्पित हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप ये डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। और वो बाद में उसने मधुबन की महिमा बताई, देखो मधुबन कितना अच्छा स्थान है, यहाँ पर स्वयं भगवान की अवतरण भूमि है और ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, हमारे दादियों ने तपस्या की, आपको भी तपस्या का चांस है यहाँ पर, और उधर सेंटर पर कि आप 5-50 लोग की सेवा कर सकें, यहाँ पर तो हजार लोगों की सेवा हो सकती है, इसलिए इधर भी रहो। तो हम थोड़े कंफ्यूज में थे क्या कर गए, हमारी इच्छा थी का लौकिक में रहते हुए गीता पाठशाला संभालना और सेंटर पर सेवा करना, मधुबन का उतना ये नहीं था निर्णय। तो हम थोड़ा निर्णय नहीं ले रहे थे, किसी भाई को हम पूछते थे तो वो अपना निगेटिव टाइप के उत्तर देते थे कि उनका कहना था कि नहीं मधुबन में समर्पित होना कोई मासी का घर नहीं, यहाँ पर भी बहुत की समस्या आती है, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। तो फिर हम क्या करें, फिर मैंने बोला बाबा को भी अपन उत्तर पूछेंगे इसका, बाबा ही कुछ इसका दे देंगे सजेशन। तो फिर मैंने दो चिट्ठी लिखी, बाबा के कुटी में बैठा और उसमें एक चिट्ठी में लिखा कि हम गीता पाठशाला संभाल कर सेंटर में सेवा करें कि मधुबन में समर्पित रूप में सेवा करें। तो चिट्ठी रख दिया दो लिख करके और आधा घंटा तक उसी संकल्प के साथ हमने बाबा को याद किया। बाद में वो चिट्ठी आंखें बंद करके मैंने उठा ली दोनों में से एक, तो उसमें आया था मधुबन में रहकर सेवा करनी है। तो फिर मेरा निश्चय नहीं हो रहा था क्योंकि मैं नाराज हो गया, मेरी यानी ऐसी इच्छा थी का उधर लौकिक में रहते हुए सेंटर पर सेवा करना और बाबा कह रहे कि मधुबन में रहो, तो थोड़ा मैं भी और भी हलचल में आ गया, यानी निश्चय नहीं हो रहा था उस बात पर, और भी ऐसी स्थिति में दो तीन दिन और भी वैसा ही रहा। फिर मैंने कहा कुछ तो निर्णय करना पड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा। तो फिर मैंने और दोबारा किया कि अभी पक्का निर्णय करेंगे और दो बार चिट्ठी लिखेंगे और जो भी बाबा सजेशन देगा वो निश्चय पक्का करके उसी अनुसार चलेंगे। तो फिर और मैंने दो चिट्ठी लिखी, उसमें वही लिखा और बाबा के कुटी में रख करके फिर एक घंटे तक हमने बाद में उसी संकल्प के साथ तपस्या की, योग किया और बाद में फिर उठाया तो उसमें वही आया था का मधुबन में रह के सेवा करने। तो बाद में मैंने नीचे गया, चलो बाबा को अपन को इधर रखना है तो इधर भी सेवा के रूप में सेवा देंगे। तो इस प्रकार कभी बाबा भी क्या करते, हमारे जो प्रॉब्लम है समस्या है तो उसका भी इस रूप में उत्तर दे सकते हैं, यानी हमारे साथ रूहरयान कर सकते हैं। तो ये भगवान का यदि वो स्थिति में स्थित हो कि हम पूछे तो भगवान उसका उत्तर दे सकता है। तो इस प्रकार हम तो बाबा के साथ रूहरयान करते लेकिन बाबा हमारे साथ करते का नहीं करते ये चेक करने के लिए तीन बातें समझो ये वाली। एक तो मुरली में हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाता है, दूसरी बाबा टचिंग कराता है और तीसरा हम चिट्ठी लिख करके भी वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि बाबा के साथ रूहरयान करना है तो रूहरयान कितने प्रकार के, कितने प्रकार से हम बाबा के साथ रूहरयान कर सकते हैं, तो कितना प्रकार से कर सकते हैं बाबा के साथ रूहरयान यानी बातचीत। हाँ, अनेक प्रकार के संबंध से संबंध जोड़ करके बाबा को हम बाबा के साथ रूहरयान कर सकते हैं। तो हमारे मनन चिंतन से हमने ऐसे चार बातें निकाली है कि बाबा के साथ किस प्रकार से रूहरयान कर सकते हैं। तो उसमें पहली बात है कि भावना के आधार से, क्योंकि भावना भाव विभोर होकर भी हम भगवान के साथ रूहरयान कर सकते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि भगवान भावना का भूखा होता है, यदि भगवान को हम भावना से रूहरयान करते याद करते तो उसका वो रिटर्न हमें देता है। तो ऐसे हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज के बारे में कहते कि उसका जो इष्ट देव विट्ठल थे उसकी प्रतिभूत उसकी भावना थी कि दिन रात वो उसके याद में मगन रहते थे। तो उसके गांव में एक पर्वत था, उस पर्वत पर विट्ठल का छोटा सा मंदिर था। वो क्या करता था, उस मंदिर में जा करके भाव विभोर होके उनके साथ बातें करता था, नाचता था, भजन गाता था। तो जब ये लोग देखते थे इधर उधर के तो लोगों को लगता इसको क्या होगा, ये क्यों नाच रहा, क्यों किसके साथ बातें कर रहा, अकेला ये तुकाराम बड़बड़ा रहा है, तो उनको लगता था पागल हो गया। लेकिन वो क्या अंतकरण से उस विट्ठल के नाम स्मरण में भाव विभोर होके उसकी भक्ति करता था और उसको याद करता था, उसके साथ बातें करता था वो। तो और उसने अभंग भी लिखा, अभंग यानी भजन, और भजन जो भी लोग वो सुनते थे या पढ़ते थे उन लोगों में परिवर्तन हो जाता था। और लिखते समय भी वो ऐसा स्वयं को चेक करता था कि जैसा भजन वो अभंग लिखा कि ये यानी कुछ दोस्त नहीं इसमें, क्या ठीक ठाक है क्या नहीं, क्योंकि गलती तो नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करता था, वो एक कॉइन सिक्का उसको गर्म करता था और गर्म करके अपनी जुबान पर रखता था, यदि वो चटका लगा तो समझता था कि ये गलत है, अभंग ठीक नहीं लिखा हमने। हाँ, चटका लगा तो और जल गया तो नहीं जल, और नहीं जला तो समझता था कि ये ठीक है। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलत नहीं है, तो इस प्रकार वो चेक करके वो अभंग लिखता था और उसका इतना प्रभाव पड़ता था, लोगों में परिवर्तन हो जाता था वो अभंग सुनते, भजन सुनते हुए। और उस समय समाज में बहुत लोग उसकी महिमा करते थे, और जहां पर भी उनका सत्संग होता था तो लोगों की भीड़ जम जाती थी। तो उस समय के जो ब्राह्मण समाज थे उनको वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इनकी लोग इतनी महिमा कर रहे है तो इस प्रकार इसकी महिमा होती रहेंगी तो हमें कौन पूछेंगे या हमारा क्या होगा, इस प्रकार से उनको डर लगता था। फिर उन लोगों ने क्या किया, ऐसी युक्ति रची कि कुछ तो करके इनका ये जो लोग महिमा कर रहे उसका कम होनी चाहिए बा। तो ऐसे समाज में उन्हें ऐसी भ्रम पैदा किया कि जो वो अभंग लिखते हैं ये गलत प्रकार के अभंग है, इससे लोग बिगड़ रहे समाज के, समाज पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इस प्रकार के समाज में उसने भ्रांतियां फैलाई, तो इसलिए इन्होंने जो अभंग लिखे है ये नष्ट करना चाहिए। तो फिर लोग क्या, उस समय ब्राह्मण समाज था, उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, लोग उनकी बात सुनते थे, तो लोगों ने भी उस प्रकार से उसके ऊपर प्रेशर डाला कि आपने जो अभंग लिखे ठीक नहीं है, उसको आप नष्ट कर दो, या वहां पर एक इंद्रायणी नदी थी उस नदी में डुबो दो। तो फिर इसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से लिखा है और अब ये लोग ऐसे कर रहे हैं, और उन लोगों का प्रभाव था तो उसको करना ही पड़ा। तो उसने कहा कि दुखी अंतकरण से वो जो लिखे हुए थे अभंग वो सब उन लोगों को दे दिया, आप ये करना है वो करो बा। तो फिर उन लोगों ने क्या कपड़े में पोड़का, वो अभंग का पोड़का बांधा और उसे एक पत्थर बांधा बड़ा सा और वो नदी में डाल दिया। तो वो अंदर चले गए, फिर इनको बहुत दुख हुआ, तो वो उसी स्थान पर नदी के किनारे पर 3 दिन तक भूखा प्यासा वैसा ही बैठा, ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो फिर क्या हुआ, 3 दिन के बाद बोलते वो अभंग ऊपर आ गए, पानी के ऊपर तैरने लगे, उतना बड़ा पत्थर भी बांधा था तो भी ऊपर आए तैरने लगे। और एक आश्चर्य की बात कि वो 3 दिन तो पानी में थे, वो तो सब भीगने चाहिए थे ना, मगर एक भी पेज उसका पानी से गीला नहीं हुआ। तो इस प्रकार वो जैसे के वैसे रे बोलते थे, एक भावना। तो ये भावना तो भक्ति में कहते हैं ना कि भावना का भाड़ा भगवान देते हैं। तो इस प्रकार यदि सच्चे दिल से हम भगवान को याद करते या रोहरियान करते हैं तो बाबा भी उसका रिटर्न मदद के रूप में देता है। तो वैसे हमारी माताएं भी देखो भोली भाली माताएं रहती हैं, तो ज्यादा पढ़े लिखी तो रहती नहीं, क्योंकि दुनिया का पढ़ना लिखना तो उसमें रहता नहीं। और मुरली भी उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन जब मुरली सुनती है पूरी मुरली भी उनके याद में नहीं रहती, लेकिन माताएं भी देखो बाबा के कमरे में 1-1 घंटे तक बैठी रहती है, बाबा के साथ रोहरियान करती है। तो एक भावना के आधार से करते ना वो, तो एक भावना हो गई उनकी। और ज्ञान भी माताओं में परिवर्तन भी होता है, उतना ज्ञान उसके समझ में नहीं आता लेकिन परिवर्तन करते है वो। और ज्ञान भी किसको सुनाना, इतनी टॉप लेवल से सुनाती है कि उन लोगों पर प्रभाव पड़ जाता है, वो लोग आश्चर्य करते कि अनपढ़ माता है मगर कितने ऊंचे लेवल का ज्ञान सुनाती है। तो सुनने वाले का भी, सुनने वाले पर भी उनका प्रभाव पड़ जाता है। तो इस प्रकार उसका आधार भावना ही रहती है ना, तो भावना के आधार से वो सब कुछ कार्य कर सकती है। तो ये है, भावना से हम बाबा के साथ भी रोहरियान कर सकते हैं, पहली बात होगी। अभी दूसरी, दिल का, दिल के साथ रोहरियान करना। बाबा ही बोलते हैं दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। यदि हम दिल से बाबा को साथ रूहरान करते हैं तो उसका भी रिटर्न बाबा देते हैं। तो जैसे कोई समझो ज्ञान भी सुनाना है किसी को, एक तो दिमाग और दिल दोनों प्रकार से रूहरान भी कर सकते हैं, ज्ञान भी सुना सकते हैं। तो ये लोग दिमाग के आधार से ज्ञान सुनाती है तो सुनने वाले को क्या, वो समझ बहुत अच्छा लगता है ज्ञान वो, और उसको खुशी भी होती है और खुशी का माहौल भी पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे वो लोग स्थान छोड़कर चले जाती है तो वो ज्ञान भी वो भूल जाते हुए, जो दिमाग के आधार से बताया हुआ है तो वो भूल जाते हैं वो लोग। लेकिन जो व्यक्ति दिल के आधार से सुनाता है वो ज्ञान भी, तो क्या होता है दिल के पास दिल तक पहुंच जाती है। तो वो लोग दिल तक पहुंच जाते और उसका अनुभव करते हैं, और जो अनुभव की हुई बात है वो कभी भूलते नहीं कोई। तो इस प्रकार यदि दिल से हम रोहरियान करेंगे तो बाबा तक वो बात पहुंच जाती है। और तीसरी बात है नॉलेज के आधार से, हम नॉलेज के आधार से बाबा के साथ रोहरियान कर सकते हैं। तो नॉलेज कैसे मिलेंगे हमें, मुरलियों में से, जो भी हम मुरली सुनते हैं मुरली का एक आधा अच्छा सा पॉइंट उठाओ, उसके साथ बाबा के साथ डिस्कस करो, तो बाबा भी उसका उत्तर देंगे हमें और रोहरियान हो जाएंगी। दूसरा एक अंदामोरल में टॉपिक निकालो, टॉपिक के उत्तर बाबा को पूछो, तो बाबा उसका एक क्लास तैयार करके दे देंगे अपन को, तो अपन उसके आधार से क्लास भी करा सकते हैं। यानी इस प्रकार बाबा से हम नॉलेज के आधार से भी रूह रान कर सकते हैं। होमवर्क हमें मिलता है लेकिन बाबा रेडी करके देते हैं, क्योंकि रूह रान से यदि हम बाबा के साथ अच्छे रूह रान करें तो तैयार हो जाता है क्लास भी। ये तीसरी बात है। अभी चौथी है संबंध। संबंध के आधार से सुशील भाई जी ने बताया कि इस बाबा से संबंध जोड़कर भी हम रूह रान कर सकते हैं। तो जैसा बाबा से हम संबंध जोड़ सकते, तो संबंध जोड़ने में क्या समानता चाहिए, क्योंकि जब बाबा जैसे बिंदु रूप है तो वैसे हमें भी बनना पड़ेगा बिंदु रूप, तब बाबा के साथ हम रूह रान कर सकते। तो ऐसे छह प्रकार के संबंध है, छह प्रकार के संबंध से हम बाबा के साथ रूह रान कर सकते हैं। तो पहला संबंध है माता पिता और बच्चों का, दूसरा है टीचर और स्टूडेंट का, और तीसरा है गुरु और शिष्य का। ये जो तीन संबंध है, इस संबंध से क्या होता है, देन लेना ही लेना होता है हमको, क्योंकि भगवान से सब प्राप्तियां मिलती रहती है, हमको देना कुछ नहीं होता। बाकी संबंध से तो हम, क्योंकि हमको भी कोई देना पड़ता है, बाबा भी देते हैं, लेकिन तीन संबंध से सब भगवान से लेना प्राप्तियां प्राप्तियां होती। जैसे माता पिता का संबंध है समझो, जैसे लौकिक में देखा जाए तो एक माता पिता अपने बच्चे को लिए क्या करते हैं, यानी छोटेपन से बड़ा होने तक उसके लिए सब कुछ करते रहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, जो भी खर्चा लगता है वो भूखे पैसे कर रह के मेहनत करते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। और यदि बच्चा भी समझो बहुत बुखार है, उसको बीमार है, तो माँ भी क्या करते, रात भर उसके लिए जागते हो। बच्चा ऐसा बोलते नहीं कि मेरे लिए जागो, लेकिन वो उसकी अवस्था स्थिति देख करके माँ क्या करते, जागती है। तो ये दुनिया का हो गया। तो भगवान के साथ भी हम माता पिता का संबंध से कनेक्शन जोड़े तो भगवान भी हमें मदद करता है, क्योंकि जैसे बाबा है, जैसे बच्चे बनते हमें वर्षे के अधिकारी बना देता है, कि सत्यों की वर्षे हमें मिल जाता है। जैसे हमें इस नशे के साथ रुर्यान कर सकते हैं कि भगवान हमारा बाप है, हम उनके संतान है, तो हम कितने भाग्यशाली है, हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमें कहा से कहा क्या बना देता है। तो इस प्रकार के हम पिता का संबंध जोड़कर भगवान के साथ रूह रान कर सकते हैं। दूसरा है टीचर और स्टूडेंट का संबंध। जैसा टीचर भी है स्टूडेंट को शिक्षा देता है, और वो स्टूडेंट वो शिक्षा अपने जीवन में धारण करता है, तो उसी को जो जिस लक्ष्य के आधार से पढ़ता है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है उसको। और टीचर भी उनको ऐसी पढ़ाई पढ़ता है कि वो स्टूडेंट अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन वो टीचर केवल उसको इंजीनियर डॉक्टर या जो भी जॉब करेंगे उसके योग्य बनाता है, उससे ज्यादा तो उसका भाग्य बन नहीं सकता। लेकिन भगवान के साथ हम संबंध जुड़े, हमारा टीचर है, तो बाबा क्या करते, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाता है वो, और इससे क्या होता है, हम मनुष्य से देवता बन जाते, देवता की डिग्री मिल जाती है हमको। भगवान ऐसा पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम त्रिलोक की नाथ बन जाते, त्रिकालदर्शी बन जाते, सत्ययुग में उच्च पद की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम टीचर का संबंध जोड़ करके बाबा के साथ रूह रान कर सकते हैं। और तीसरा है यानी गुरु और शिष्य। जैसा गुरु है वो शिष्य को आप समान बनाने का प्रयत्न करता है, ये भी मेरे जैसा बन जाए, यानी उसकी भी सदगति हो जाए, तो वैसा बाबा अभी हमारा सदगुरु है, तो बाबा क्या हमारी सदगति कराता है, क्योंकि जब भी हम जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म है सिर के ऊपर, वो बाबा ऐसी विधि बताते हैं कि उस विधि के आधार से हमारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, और उसके आधार से हमें सत्य में ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। तो इस पर तीन संबंध से हम बाबा को के साथ रोहरियान करती है, तो वो प्राप्तियां के आधार से, क्योंकि तीन संबंध से जो भी भगवान से हमें प्राप्तियां प्राप्ति मिलती है, तो उस प्राप्तियां के आधार से हम रोहरियान करता है। अभी चौथा संबंध है दोस्त का संबंध। तो भगवान हमारा क्या है, दोस्त है, और दोस्ती के लिए भी समानता चाहिए। तो इसलिए हम जब जैसे बाबा है वैसे हम बनेंगे तो हम दोस्ती का निभा सकते हैं, रोरियान कर सकते हैं। जैसे दुनिया में देखा जाए तो जो दोस्त होते हैं, दोस्ती किसके कारण होती है, समानता के आधार पर ही होती है ना। तो उसमें जैसे स्वभाव है, स्वभाव संस्कार है, स्वभाव संस्कार समान रहेंगे तो एक दूसरे की दोस्ती हो सकती है, नहीं तो एक के स्वभाव संस्कार क्रोध करने के और एक के प्यार के, समझो प्रेम करता है वो, तो दोस्ती नहीं हो सकती। अपना क्रोध के साथ बातें करेगा और वो प्रेम से करेगा तो उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। वैसे उम्र के हिसाब से भी दोस्ती हो सकती है, किसी की उम्र समझो 10 साल की और किसी की 70 साल की है तो उसकी दोस्ती हो सकती क्या? वैसे हो भी सकती है, ऐसा नहीं, मगर उतना नहीं। यानी जैसे समान उम्र वाले की जैसी दोस्ती बातचीत करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे, उतनी नहीं हो सकती। तो उम्र के भी समानता चाहिए। और एक आदत, आदत के आधार से हम दोस्ती कर सकते दुनिया के वो लोग। जैसे किसी को समझा गलत आदत है कि तो बायोस्कोप देखने की आदत है तो बायोस्कोप देखेगा, किसी की आदत समझो सत्संग में जाने की है तो वो सत्संग में जाएगा। यदि वो दोस्त उसको बोलेंगे आप सत्संग में जा लो चलो, तो वो बायोस्कोप वाला, बायोस्कोप देखने वाला सत्संग में नहीं जाएगा। और यदि वो बायोस्कोप देखने वाला बोलेंगे सत्संग वाले को आप बायोस्कोप देखने के लिए चलो, तो वो नहीं जाएगा। इसलिए समानता के आधार पर दोस्ती नहीं, जा भी सकता है मगर उसमें उसकी स्थिति डाउन हो जाएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर कुछ दिन के बाद उसकी दोस्ती खत्म हो सकती है, क्योंकि वो सन नहीं करके, क्योंकि उनके संस्कार अच्छे और बुरे संग में उसके ले जाएंगा तो वो कुछ दिन के बाद दोस्ती समाप्त हो जाएंगी उनकी। तो इस प्रकार है। और ये चौथा प्रकार है, गांवों के आधार से दोस्ती होती है। यदि गांव एकादम समझो विदेश में रहता है और यदि उसका ही गांव का व्यक्ति अचानक उसको विदेश में दिखाई दिया तो उसको कितना अच्छा लगता है कि उसको तुरंत उससे बात करेंगे। गांव में तो कभी बात नहीं करेगा उनके साथ, लेकिन विदेश में मिल गया तो अच्छी सी बात करेगा, उसको अपने घर ले जाएगा और बाद में उन दोनों की दोस्ती हो जाती, एक दूसरे घर में जाना आना चालू कर देंगे। तो इस प्रकार लौकिक दुनिया में भी ये चार प्रकार से समानता रहेंगी तो दोस्ती हो जाएंगी। वैसे हमारे भी बाबा के साथ दोस्ती करनी है तो हमें भी क्या करना है, समानता रखनी पड़ेगी। तो किन किन बातों की समानता चाहिए, तो उसमें पहली समानता स्वरूप की समानता, स्वरूप जैसे बाबा का स्वरूप क्या, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, देशे न्यारे, वैसे हमें भी आत्मीय स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। यदि हमारी बुद्धि इधर उधर देहधार में भटकेंगी तो हमारा स्वरूप नहीं हो जाएगा। तो हमें भी आत्मीय स्थिति में स्थित होके रहना पड़ेगा, तब बाबा के साथ हमारी रोरियान कर सकते हम। दूसरे गुणों के आधार से दोस्ती, जैसे बाबा के अंदर कितने गुण है, वो गुणों का सागर है, यानी सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का बाबा जैसा सागर है, वैसे हमें भी क्या वो सागर बनना पड़ेगा। तो जैसे बाबा के गुण है वैसे हमें अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, तो उसके आधार से हमारे बाबा के साथ हम दोस्ती का संबंध जोड़ करके हम रोहरियान कर सकते हैं। और तीसरा है, यानी वो गांव की, जैसे लौकिक में एक गांव वाले दूसरे गांव वाले से दोस्ती हो जाती, वैसे हम भी गांव के आधार से दोस्ती कर सकते। तो भगवान का गांव कौन सा है, परमधाम, तो वैसा हम भी परमधाम निवासी, बाबा भी परमधाम निवासी है, तो परमधाम के आधार से हम रोरियान कर सकते कि बाबा भी परमधाम में हम भी परमधाम में रहते हैं, तो परमधाम में बाबा क्या करते हमें भी क्या, हम भी क्या करते, इस प्रकार से रोरियान कर सकते। तो इस प्रकार दोस्ती के आधार से भी हम बाबा के साथ दोस्त का संबंध जोड़ करके रोरियान कर सकते हैं। ये हो गया चौथा प्रकार। अभी पांचवा है प्रियतम का संबंध जोड़ करके रोरियान, यानी भगवान के साथ हम प्रियतम का संबंध जोड़कर भी रोरियान करते। जैसे भक्ति में मीरा, उस वो श्री कृष्ण को अपना एक प्रियतम माना था उन्होंने, तो वो क्या करती थी, चलते फिरते उठते बैठते उसके याद में खोई हुई रहती थी, मेरा तो ये गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस प्रकार से वो उसके साथ रोरियान करती थी। तो वो नाचती थी बोलते उनकी याद में, ऐसे भजन गाती थी, क्योंकि वो एक उस राज्य की महारानी थी। लेकिन जब लोग देखते थे कि महारानी होती हुई सड़क पर नाच रही है उसके याद में, तो वो लोग को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसने लोक लाज को छोड़ दिया था। अगर लोग कुछ भी बोले, लेकिन हम भगवान के साथ रुरियान करना या भगवान की याद में मगन होना नहीं छोड़ेंगे, तो एकदम उसमें समर्पित हो गई थी उसके ऊपर। वैसे हमें भी भगवान को क्या करना है, प्रियतम जोड़ करके, संबंध जोड़कर उसके साथ रुरियान करना है, उसके लगन में मगन होना है। क्योंकि जैसा जो कोई किसका प्रिय होता है उसकी हर एक बात उसको अच्छी लगती है, तो वैसा बाबा भी हमारा प्रियतम है, तो बाबा की हर एक बात हमें अच्छी लगनी चाहिए उसके आदर से। कि हाँ, तो इस प्रकार जैसे बाबा का जो हमें डायरेक्शन देते हैं, बाबा श्रीमत देते हैं, बाबा श्रीमत देते हैं, जो नॉलेज देते हैं हमको, तो उस नॉलेज को हम अपने क्या कौन सा नॉलेज दिया है हमें, या बाबा ने क्या क्या श्रीमत दी है हमें, तो वो श्रीमत और नॉलेज के आधार से हम बाबा के साथ रूह रियान कर सकते हैं। और लास्ट है बच्चों का संबंध। जैसा पहला संबंध हमने जोड़ा माता पिता, भगवान हमारे माता पिता, हम उनके बच्चा है, अभी हम भगवान को बच्चा बना ले, हाँ, कि भगवान हमारा बच्चा है। तो जैसा लौकिक में देखा जाए तो लोग क्या बच्चे के लिए क्या कर्तव्य रहते हैं, उनके कितने करते हैं उसके लिए, वो यानी तन मन धन से उन पर कुर्बान जाते हैं ना, तो वैसे हमें भी तन मन धन से भगवान के ऊपर कुर्बान जाना, जैसे तन से बाबा का यज्ञ में हमें सेवा करनी है, जैसे मन से अपना मन बाबा पर लगाना है, और धन से भी जो भी धन नहीं तो बाबा के यज्ञ में हमें समर्पित करना है। तो इस प्रकार ये छह संबंध जोड़ करके हम भगवान के साथ रियान कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।